તારીખ 4/9/1992 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ગ્વાલિયરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 16.
ચતુર્ગુણ સ્થાન મેં તો વો બાત આતી નહીં, પંચમ ગુણ સ્થાન કી પડીમાં મેં વો બાત આતી, 11 પડીમાં મેં વો બાત આતી હૈ. અબ ચતુર્થ ગુણ સ્થાન નહીં હો, પહેલા ગુણ સ્થાન હો તો ભી ટ્રેડિશન કે હિસાબ સે હમ યે કહેંગે કે જૈન જો નામ ધરાતે હૈ, નામ સે ભી જૈન હોતે હૈ, ઉસકો રાત્રિ ભોજન નહીં હોના. તો કહી બાતે જો હૈ વો છોટી હૈ ઓર ઉસકો મોટી ભી ટ્રેડિશન મેં બન જાતી હૈ, ઓર મોટી હૈ વો કભી છોટી ભી ટ્રેડિશન મેં બન જાતી હૈ. તો જિસ જમાને મેં જિસ પ્રકાર કા માહોલ ચલતા હૈ, સામાજિક માહોલ હોતા હૈ, ઉસમેં ઉસકે અગેન્સ્ટ મેં જા કરકે, ઉસકે વિરુદ્ધ જા કરકે દૂષિત ભાવ કો અગર કોઈ કરતા હૈ તો કબ કર સકતા હૈ, યદિ ઉસકો ઇસ દુષ્ભાવ દોષ કા આગ્રહ હોતા હૈ તબ. જબ આગ્રહ બન જાતા હૈ તો દોષ કરના ચાહીએ વો બાત આ જાયેગી. લેકિન એક બાત હંમેશા હંમેશા જો ખ્યાલ મેં ધ્યાન મેં રખને લાયક હૈ વો વો હૈ કે જિસકો પરિપૂર્ણ નિર્દોષ હોના હૈ ઇસકા યે માર્ગ હૈ. તો હમારા જો અભિપ્રાય હૈ વો અભિપ્રાય હમ કૈસે નિર્દોષ હોવે ઉસી એંગલ સે હમે હર બાત કો સોચના હૈ, વો અભિપ્રાય મેં રખ કરકે હમે હર બાત તો સોચના હૈ. ફિર કોઈ ક્ષોભશમ સે જાણકારી મેં ગલતી હો જાય અલગ બાત હૈ, લેકિન હમારા અભિપ્રાય તો વો હોના ચાહીએ કે હમે કોઈ દોષ હમ મંજૂર નહીં કરતે, દોષ કરના હમ સંમત નહીં કરતે. હમારા અભિપ્રાય નિર્દોષ હોને કા હૈ, દોષિત બનને કા હમારા અભિપ્રાય નહીં હૈ. મને ફોલ્ટ એક બાત હોતી હૈ ઓર ઇન્ટેન્શન ઓફ ફોલ્ટ એ દૂસરી બાત હોતી હૈ હમેશા. એ ન્યાય કા વિષય હૈ, ન્યાય કા વિષય મેં ફોલ્ટ ઓર ઇન્ટેન્શન ઓફ ફોલ્ટ દો બાત અલગ અલગ તરીકે સે દિખા જાતા હૈ. તો ફોલ્ટ હો સકતા હૈ, ક્ષમ્ય હૈ, લેકિન ઇન્ટેન્શન ઓફ ફોલ્ટ હૈ વો અક્ષમ્ય હૈ. ઇસ તરહ સે ઇસ બાત કો સોચના ચાહીએ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ હોતી હૈ ન્યાય મેં. વો હા ઠીક હૈ, ઠીક બાત હૈ, સહી બાત હૈ. જી જી ઓર જી અચ્છા, મેં અજીવ કે જો વિભાવ પર્યાય હૈ પરમાણુ કે ઉસમેં એક શુદ્ધ પરમાણુ કો છોડ કરકે, અકેલા શુદ્ધ પરમાણુ કો છોડ કરકે, વો દો પરમાણુ સાથ મેં હોતે હૈ વહાં સે લેકર કે જીતને સ્કંદ હૈ ઓર જૈસી ભી ઇસકી પર્યાય હૈ વો સબ વિભાવ મેં જાતી હૈ. એક શુદ્ધ પરમાણુ હી શુદ્ધ ગિના જાતા હૈ, બાકી ઇસસે આગે જો ભી જીતની ભી જૈસી ભી પર્યાય હૈ વો પુદ્ગલ કી વિભાવ પર્યાય ગિનને મેં આતી હૈ. જીવ મેં વિભાવ પર્યાય વિભિન્ન ગુણો કી વિભિન્ન પ્રકાર કી હૈ. શ્રદ્ધા કી જો પર્યાય મિથ્યા શ્રદ્ધા વિપરીત શ્રદ્ધા હૈ વો શ્રદ્ધા કી વિભાવ પર્યાય હૈ. જ્ઞાન મેં પર કો સ્વય જાનના, સ્વ સે અનિભિજ્ઞ રહેના, પર સન્મુખ હોના, એ સભી પ્રકાર કે જ્ઞાન કા વિભાવ પર્યાય હૈ. ચારિત્ર મેં જો ભી એક અંશ કસાય સે લેકર કિતના ભી કસાય હો ફિર વો વિભિન્ન પ્રકાર કા હોતા હૈ. હાસ્ય કો ભી હમ કસાય કહેંગે, ક્રોધ કો ભી કસાય કહેંગે, મોહ કો ભી કસાય કહેંગે, દ્વેષ કો ભી કસાય કહેંગે, રાગ કો ભી કસાય કહેંગે. ઉસમે બહોત વિવિધ પ્રકાર હૈ, તો ચારિત્ર ગુણ કે પર્યાય હૈ તો ઇસકે વિભાવ હૈ. ઓર સમુચય રૂપ સે જો દ્રવ્ય પર્યાય હૈ ઉસમે ભી વિભાવ, એ તો ગુણ કી બાત હુઈ. અબ દ્રવ્ય કી લેવે, યે મનુષ્યપણા હૈ વો વિભાવ પર્યાય હૈ. ચારોં ગતિ કે જો દ્રવ્ય કી પર્યાય હોતી હૈ, કોઈ નારક કોઈ જીવ હોતા હૈ, કોઈ મનુષ્ય હોતા હૈ, કોઈ દેવ હોતા હૈ, તો સભી વિભાવ પર્યાય હૈ. એક સિદ્ધ પર્યાય હૈ વહી સ્વભાવ પર્યાય હૈ. સિદ્ધ પર્યાય કો છોડ કરકે સંસારી ઓર સિદ્ધ દો હી વિભાગ લિયા હૈ જીવ કા. વિશ્વ મેં જો જીવ હૈ ઉસકે દો વર્ગ લિયે હૈ, એક સંસારી ઓર એક સિદ્ધ. તો સિદ્ધ સે નીચે લેકર કે જીતની ભી અવસ્થા હૈ અસિદ્ધત્વ ભી વિભાવ હૈ. ભલે 13મા 14મા સ્થાન હો लेकिन असिद्धत्व को भी विभाव माना गया है। तो क्या है, वो प्रतिजीवी गुण की विभाव पर्याय है, अनुजीवी गुण की विभाव पर्याय 13वें गुण स्थान से खत्म हो जाती है। तो ऐसे गुण अनुसार, द्रव्य अनुसार, अनुजीवी गुण अनुसार, प्रतिजीवी गुण अनुसार, ऐसे विभावों के जीव के परिणामों में बहुत से प्रकार हैं। पुद्गल की विभाव पर्याय तो दो परमाणु का स्कंध हो गया। हाँ, संबंध तो नैमित्त नैमित्तिक होता है। जैसे सभी कर्म वर्गणाएं हैं, उसमें से अपने स्वकाल के अनुसार जिस जिस जीव के विभाव पर विभाव होते हैं और नए कर्म प्रकृति धारण करके कुछ हिस्से में, कुछ संख्या में उसको प्रदेश कहते हैं, कुछ रस ले करके, कुछ समय की मर्यादा के साथ वो जीव के साथ रहता है, तो उसको हम बंध कहते हैं। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, चार पड़के हैं एक बंध पर्याय के। तो ऐसे जो बंध होते हैं वो परमाणु की विभाव पर्याय गिनने में आई है, जो जीव के विभाव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध रखता है। खास करके वो परमाणु के विभाव पर्याय में जो कर्म प्रकृति है उसका संबंध ज्यादा है। फिर इसका फल रूप जो है वो नोकर्म आता है, संयोग में असंयोग होता है। जैसे किसी को शरीर अच्छा मिलता है, किसी को रोगिष्ट शरीर मिलता है, ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर हैं। तिर्यंच के अनेक प्रकार के हैं, मनुष्य के अनेक प्रकार के हैं, देवों के अनेक प्रकार के हैं। ये सब कर्म फल रूप है, तो ये सब विभाव पर्याय में जाते हैं पुद्गल के। और जीव के विभाव के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा जी, हाँ, परमाणु, एक परमाणु शुद्ध होने के बाद कभी अशुद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें परमाणु शुद्ध हो गया फिर वो अशुद्ध नहीं हो गए, ऐसा नहीं बनता। लेकिन जीव को शुद्ध होने के बाद संसारीपना नहीं आता, इतना फर्क है दोनों में। हाँ हाँ, फिर क्या है कि उनके पर्याय में स्वतः ये फेरफार हो जाता है, चिकनापन में, लुखापन में, तो एक दूसरे परमाणु के साथ वो जुड़ जाते हैं। तो परमाणु शुद्ध भी होता है, फिर अशुद्ध होता है, फिर शुद्ध होता है, फिर अशुद्ध होता है, उसमें ऐसा उसमें बनता है। जीव तो चैतन्य स्वभाव वाला होने से, हाँ, उसमें ऐसा नहीं होता। वो तो परमाणु तो अपने को जानता नहीं, अपने को जानता नहीं, अपने परिणमन को जानता नहीं, अपने स्वभाव को नहीं जानता, अपने विभाव को नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। हाँ, फर्क रहता है, ऐसा तो वो उसका विज्ञान है, तो उसके गुण धर्म के अनुसार, उसके जो कैरेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं साइंस में, उसी के अनुसार अपना अपना काम परमाणु करते रहते हैं। इसमें हमारे धर्म के क्षेत्र में मुख्य बात सुख दुख का प्रयोजन को लेकर के चलती है। अगर हमें परमाणु का ज्ञान करना है तो भी हमारा सुख दुख से कितना संबंध है उतना लक्ष्य में लेकर के करनी है। बाकी तो विषय तो उतना अप्रयोजन रूप भी दिव्य ध्वनि में प्रसिद्ध हुआ है केवल ज्ञान के द्वारा, कि सभी बात सभी जीवों को प्रयोजन नहीं होती, एक बात भी सभी जीव को प्रयोजनभूत नहीं होती और सभी बात भी सभी जीवों को प्रयोजनभूत नहीं होती। तो इस तत्वज्ञान के अभ्यास में हमें उतना, क्योंकि हमारे पास समय मर्यादा है, हमारी आयु है वो सीमित है, तो हमारे काम की चीज कौन सी है उतना ही हमें समझने की कोशिश करना है। दूसरी दूसरी बातों में उलझने से हमारी शक्ति और हमारा समय बर्बाद होता है, और बर्बाद होने से हमारी शक्ति भी सीमित है। तो जो हमारे काम की बात आएगी उस पर हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य नहीं रहेगा, ये नई आपत्ति खड़ी होती है उसमें। इसलिए हमेशा मुमुक्षु को ये ध्यान में रखने का है कि हमारे मतलब की बात कितनी है, उतने से ही हम हमारा विचार को, हमारी शक्ति को प्रयोग में लें। इसको छोड़ करके हमें आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, ये बात हमेशा विचारने की होती है। तो हमारे यहाँ जो प्रश्नोत्तरी चलती है तो हम उस प्रश्नोत्तर को भी सीमा में रखते हैं, उतनी सीमा में रखते हैं कि हमारे प्रयोजन की जो बात है उससे हम विशेष विचार करने के लिए चर्चा में ले आए। अगर कोई प्रयोजन की बात नहीं है तो उसकी चर्चा करने से हमारा भी समय खराब होगा, दूसरों का भी समय बिगड़ जाएगा, ये सब की बात हो जाएगी। देखिए कि जो जीव का मूल स्वरूप है, एक चर्चा चली थी आपको ध्यान में होगी कि मूल स्वरूप जो निश्चय स्वरूप है जीव का वो अनुभव स्वरूप है, न द्रव्य स्वरूप है केवल, न केवल पर्याय स्वरूप है। इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल द्रव्य का आश्रय किया जाता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल पर्याय का आश्रय किया जाता है, लेकिन निश्चय जो तत्व है इसका आश्रय किया जाता है जो अनुभव स्वरूप है। अनुभव स्वरूप इसलिए है कि उभय विभाग में देखा जाता है, जैसे कि उपयोगो लक्षणम कहा, तो उपयोग तो पर्याय है। अगर वो निश्चय तत्व उपयोग में देखा नहीं जाता तो पहचान कहाँ से होगी। अमृतचंद्र आचार्य देव ने सारा समय सार की टीका करने के बाद, उनको विकल्प रह गया आचार्य महाराज को, तो उन्होंने लक्ष्य लक्षण की चर्चा परिशिष्ट में ली। क्यों ली? कि आचार्य महाराज को ये बात ध्यान में आई कि मैंने आत्मा को ज्ञान मात्र तो कहा, लेकिन ज्ञान मात्र माने क्या? ज्ञान में हम द्रव्य लेवे, ज्ञान में हम गुण लेवे, कि ज्ञान में हम पर्याय लेवे, क्या लेवे? क्योंकि अगर किसी ने आत्मा को नहीं पहचाना हो, ऐसा अनादि से आत्म स्वरूप से अनभिज्ञ जीव है, उनके लिए उपयोग में द्रव्य स्वभाव व्यक्त होता है। किससे व्यक्त होता है? कि संवेदन से व्यक्त होता है, आता है इसमें संवेदन से व्यक्त होता है। मैं बताऊं आपको चर्चा में, ज्ञान के उपयोग में लक्ष्य और लक्षण दोनों हैं, अभिन्न रूप से। क्यों? तो प्रश्न पूछा है, स्वयं ने उठाया है कि कौन सा लक्ष्य है। लक्ष्य मैंने निश्चय स्वरूप, जिसका लक्ष्य किया जाता है, जो ज्ञान की प्रसिद्धि द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है, ऐसा प्रश्न उठाया। तो उत्तर दिया कि नहीं, ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं, ज्ञान तो पर्याय है, इससे भिन्न लक्षण नहीं, लक्ष्य नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान और आत्मा को द्रव्यपणे अभेदता है। क्या? पर्याय पर्याय है, फिर भी पर्याय को द्रव्यपणे वहां देखनी है। क्या कर दिया? द्रव्यपणे अभेदता है, पर्याय का एक भेद को बाउंड करके वहां द्रव्यपणे देखने का है, तो देखा एक अंग है।
जैसे हमारा पूरा शरीर है लेकिन ये अंगुली है वो भी एक शरीर का अंग है, तो शरीर से बिल्कुल शरीर का कोई उसका संबंध नहीं, ऐसा नहीं देखा जा सकता। तो ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र को नीति स्वरूप हो स्वसंवेदन से करना है, स्वसंवेदन से इसकी सिद्धि उसकी मौजूदगी ग्रहण करी है, ग्रहण करने वाली है। वो बात पंडित जयचंद्र जी ने लिया है, समय सारणी की टीका में नहीं आया है, तो परिशिष्ट में लिया आचार्य महाराज ने, लेकिन जयचंद्र जी ने लिया है। जयचंद्र जी ने 415 गाथा के बाद जो एक कलश लिखा है अमृत चंद्राचार्य देव ने, 246 कलश है, उसका भावार्थ संदिग्ध के वक्त वो बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। इस शास्त्र में आत्मा को ज्ञान मात्र ऐसा क्यों कहा, ये प्रश्न चला है। तो आत्मा को पहचान करने के लिए उपयोगो लक्षणम, पहचान कराने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, ऐसा कहा है। क्यों? तो इसके सिवा आत्मा पहचाना नहीं जाता, कोई याद नहीं, कोई रास्ता नहीं आत्मा को पहचान करने के लिए। और अनंत गुण है इसमें चर्चा किए, अनंत गुण है इसमें ज्ञान को क्यों लिया, तो ज्ञान साकार है, प्रगट है और अनुभव गोचर है, ये तीन मुद्दा लिया है वैकुंठ जी ने। इसलिए उसके द्वारा ही आत्मा पहचान सकते हैं, उसके सिवा आत्मा को पहचान सकते नहीं, ये परिस्थिति है। इसलिए ज्ञान सामान्य की बात ली कि जो ज्ञान सामान्य में स्वसंवेदन है वेदन वहां से पाया जाता है, ज्ञान विशेष में वेदन में पाया जाता है। इसलिए यहाँ भी ज्ञान को ही प्रधान करके आत्मा का तत्व कहा है, क्या कहा है, आत्मा का तत्व। आत्मा तो तत्व है, आत्मा स्वयं तत्व है और ज्ञान तत्व का भी तत्व है, ऐसा कह करके ये बात कही है। तो गुरुदेव श्री ने इस विषय पर प्रवचन फरमाते हुए एक बात बहुत सुंदर की थी, ये ध्यान में लेने योग्य है, जिसमें आपका प्रश्न का टू डी पॉइंट समाधान होने की जगह है वहाँ अवकाश में। तो ज्ञान के उपयोग में ज्ञान स्वभाव व्यक्त होता है, क्योंकि एक गुण को अनुगुण का रूप है, इसलिए ज्ञान के उपयोग में ज्ञान स्वभावी आत्मा व्यक्त होता है, मैंने आत्म स्वभाव व्यक्त होता है। वैसा उपयोग में व्यक्त है वैसा का वैसा द्रव्य गुण में वो व्याप्त व्यापक रूप से पड़ा है, पर वो संकेत दिया है उन्होंने पूर्वी गाथा में, नव तत्व में चैतन्य ज्योति स्थिति हुई है। तो नव तत्व में तो पाप तत्व भी है, पुण्य तत्व भी है, ये तो विभाव है, फिर भी चैतन्य ज्योति तो नवों में स्थिति हुई है, ये सामान्य है। तो जो ज्ञान सामान्य है ठीक इसके सदृश द्रव्य सामान्य है, तो प्रगत सामान्य से अप्रगत सामान्य का पता लगा। तो ये चैनल है अंतर में जाने के लिए, अंतर्मुख होने के लिए, अंतर में कैसे उपयोग को ले लाए विकल्प को छोड़ कर। ये संवेदन है ज्ञान सामान्य का, द्रव सामान्य ऐसा ही है ऐसा प्रगत रूप में आविर्भाव कर सकते हैं स्वभाव भाव को, और ये आविर्भाव होते ही अंतर्मुख पड़ा होता है। ये विचार इस तरह का गुरुदेव ने सीधा जैसा लगा अनिवार्य रूप से कि ज्ञान विशेष पर आविर्भूत होते हुए तो कहाँ जाते हैं, विषय पर चले जाते थे नहीं, जैसे हमको कड़वा लगा कोई कड़वी चीज अच्छी नहीं होती है लेकिन आविर्भाव हो गया तो चीज पहुँचाएंगे, कोई चीज मीठी लगी तो ज्ञान विशेष है लेकिन वो चीज अच्छी लगेगी। तो अनिवार्य रूप से ज्ञान विषय आविर्भूत होते ही अनिवार्य रूप से परद्रव्य का आश्रय हो जाता है। ऐसे ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होने से अनिवार्य रूप से परद्रव्य का आश्रय हो जाएगा, पर्याय का आश्रय नहीं रहेगा। ये इसमें तथ्य है और सूक्ष्म बात है और प्रैक्टिकल साइड की बात है। तो हम जो कहते हैं वो उसकी परिभाषा अवश्य है, वो थ्योरी है, लेकिन थ्योरी का प्रैक्टिकल क्या है वहां तक जाना पड़ेगा, जब इस बात का सही एहसास आएगा। वहां तक तो बात थोड़ी समझ में ऊपरी ऊपरी रह सकती है। जैसे साइकिल पर बैलेंस रखना है, बैलेंस रखना है वो ऊपरी बात है, कैसे बैलेंस रखना वो तो सीट पर बैठते हुए ही मालूम पड़ेगा, इसके सिवा वो मालूम नहीं पड़ सकता कि बैलेंस कैसे रखना। ये बात टेक्निकल साइड की होती है हमेशा। 10 साल की घर में बच्ची होती है तो देखती है कि मेरी माँ रोटी बनाती बनाती है, और रोटी कैसे बनाना उसको थ्योरी बराबर आती है, लेकिन जो बनाने को बैठती है तो उसको पता चलता है कि रोटी कैसे बनाना, क्यों कैसे नहीं बनती है, देखते हैं उस तरह नहीं बनती है, बनाने में उसको भी कोई टेक्निक होती है जब रोटी बनती है। तो इस तरह हर जो बात है प्रैक्टिकल नॉलेज की जो होती है तो प्रैक्टिकल नॉलेज से ही सिद्ध होती है, इसके सिवा उसकी प्राप्ति नहीं होती है। डॉक्टर का विज्ञान ऐसा है उसमें 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है, साथ कानून बनते हैं तो उसको भी आर्टिकल शिफ्ट करना पड़ता है। प्रैक्टिकल नॉलेज हुए बिना, हाँ ये विषय तो प्रैक्टिकल नॉलेज का है, अनुभव ज्ञान है वो प्रैक्टिकल नॉलेज का है, उसे थ्योरी से काम करने वाला नहीं है। शुद्ध है गुण, शुद्ध है पर्याय में अशुद्धता है, वो कर्म के कारण नहीं होती, वो अशुद्धता आई कहाँ है, ये प्रश्न शायद हमारे मन में चलता है। क्योंकि द्रव्य गुण शुद्ध है और पर्याय में अशुद्धता आती है तो कहाँ से आती है। तो ये जो द्रव्य गुण का जो ज्ञान है वो ज्ञान मोटा मोटा है, थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा कि द्रव्य को भी अपने धर्म है, गुण को भी अपने धर्म है और पर्याय को भी अपने धर्म होते हैं। तो ये अशुद्धता और शुद्धता दोनों पर्याय धर्म है। इस पर्याय धर्म के अनुसार देखें तो द्रव्य गुण न तो अशुद्ध है और न तो शुद्ध भी है, जैसा है वैसा है। क्यों? तो शुद्धि अशुद्धि पर्याय में लागू होती है, द्रव्य में लागू सामर्थ्य में लागू नहीं होती है। जैसे दीवार सलाई में अग्नि होती है, छोटी है कि मोटी है बताइए, क्योंकि वहां पर्याय धर्म लागू नहीं होता, पीली है कि नीली है। दीवार सलाई में रही हुई अग्नि सामर्थ्य है, व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, तो पीली नीली वो बात वहां लागू नहीं होती। जब उसको ग्रीष्म खींच करके उसकी ज्वाला निकलती है, सुखा निकलती है, तब उसके धर्म प्रकट होते हैं कि वह पीली होती है या नीली होती है या बड़ी होती है या छोटी होती है। लेकिन जब तक वो प्रकट नहीं हुई है नहीं, वहां तक कोई धर्म छोटी मोटी ऐसा लागू नहीं होता। तो ये पर्याय धर्म है, शुद्धि अशुद्धि वो पर्याय धर्म है, तो द्रव्य गुण के धर्म ही नहीं है। इसलिए पर्याय धर्म की सीमा पर्याय में होती है, द्रव्य गुण में इसकी चर्चा अपने स्थान में नहीं है, अस्थान में है। तो मैंने द्रव्य गुण क्या है वो सही रूप में हम समझे तो ये प्रश्न उपस्थित नहीं होता पर्याय धर्म का। तो वहां क्यों नहीं, तो अपने इनके धर्म भी समझने चाहिए। जब भी द्रव्य गुण क्या चीज है, क्या तथ्य है, तो समझ सकते हैं, वरना ऊपर ऊपर से तो द्रव्य गुण बोलेंगे लेकिन का स्वरूप पता नहीं चलेगा, समाधान नहीं आएगा कि ये राग आया कहाँ से। चारित्र गुण में द्वित राग का प्रकट होने का स्वभाव क्या, चारित्र गुण में द्वित राग कहाँ से आया, कि जो राग आया है वो पर्याय धर्म है, गुण में कोई चीज आती नहीं होती। फिर भी ऐसा कह सकते हैं कि योग्यता है तो ये धर्म है, गुण नहीं है वो धर्म है। गुण को हम पदार्थ की प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसे धर्म को हम कैरेक्टर कहते हैं, धर्म की गई होता है। हाँ तो हम क्रिया गुण को हम क्रिया रूप में कई क्रिया रूप में पर्याय के क्रिया रूप में ऐसी बात है, तीनों को अपने अपने धर्म है ऐसी बात है। मोक्ष का प्रकाश शक्ति तीसरे अधिकार में कसाई की स्थिति और अनुभाग बल के संदर्भ में, बल के अनुभाग के संदर्भ में ऐसा लिखा है आपने, कौन से शब्द पे हुए देव मनुष्य पर्यंत आयु का स्थिति अल्प कथाए होने पर बहुत और बहुत कथाए होने पर अल्प होता है। हाँ वो सब आपके प्रश्न था कि अघाती की बात है क्या, अघाती की बात है, अघाती में क्या होता है कि कषाय मंद होने हैं, देह की स्थिति आयु की लंबी हो जाएगी, जबकि कषाय तीव्र होने से नाड़ी की आयु स्थिति लंबी हो जाएगी। अघाती का मंद ऐसा पता है, घाती अघाती में कई प्रकृतियों में उल्टी सूटी बात है, ये सारा करणानुयोग का विषय है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि जो बहुत कसाय करता है सातवीं नाती में जाने तक का, तो उसको तैतृस सागर की स्थिति पड़ती है, और वाल्मीकि संत को तैतृस सागर की सर्वासिद्धि की स्थिति पड़ती है। क्यों, दोनों का आयु क्यों लंबा हुआ, एक को तो कसाय मंद है एक को तो कसाय तीव्र है, दोनों को आयु तैतृस सागर का क्यों, क्यों कि ये नारकी का है और ये देव का है, कसाई एक तीव्र एक मंद और स्थिति बहुत लंबी होगी दोनों की, ये अघाती में ऐसा चित्र विचित्र है परिस्थिति। और बहुत कषाय होने पर अल्प होता है, जैसे कि निगोद है उनको कषाय बहुत है, उनको ऐसा भी होता है कि एक साथ पास में 18 वर्ष उनका जीवन मरण होता है, ये होता है। इस संबंध में शंका है कि देव मनुष्य पर्याय में तो यह बात ठीक प्रतीत होती है, परंतु तिरंज आयु में तो एक इंद्रिय निगोलिया तक जाते हैं जो नरकायु से भी निकृष्ट है, इसमें उपर्युक्त बात कैसे घटित होती है। तो उसमें ये प्रकृतियों की ये विचित्रता है, आयु कर्म के दूसरे कर्म की अलग अलग प्रकार की होती है, इन तीन आयु का अल्प कषाय में बहुत और बहुत कषाय में अल्प स्थिति बंध जानना, ये करणानुयोग का टोडरमल जी को बहुत ज्ञान था, जब उन्होंने कुंभ सार की टीका लिखी है तब उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों के अनुभाग में शक्ति का विशेष होता है। वहां जैसा अनुभाग बंद हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है और बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनता है। अच्छा तो इसमें तो ये सा लिया है कि देव मनुष्य तीर्यंच आयु के बिना उतनी अपेक्षा लिखा है, तो तीन को छोड़ कर दो, तीन को तो छोड़ दिया है, तीनों को छोड़ा है इधर,
तीनों छोड़ा, तीनों
हाँ, तो अब कौन बाकी रहा, एक नारक रहा,
दो तो पहले नारक
बस, तो ये तो नारकी के अपेक्षित बात हुई, इन तीन को तो लेना ही नहीं है, इन तीन को तो छोड़ देना है अपने विचार में से, एक नारकी का ही विचार करना है
जो बस,
तो उतना ही वो कहना चाहते हैं,
अल्प कसा होते हुए तो बहुत बंद कैसे होगा तिरंजन,
नहीं उसको तो छोड़ दिया,
तिरंजन तो कसा तो निगोदिया और नर्द से नर्द से निकल होती है, वो तो जरूर निकल होती
है, तीन को छोड़ कर के बात है, देव मनुष्य तिरंज को आयु के छोड़ कर के बात है,
मैं अकेले नारके की बात है,
नारकी की तो निकल गई, नारकी बात निकल गई है। वो तो अब ट्रेन के बाद इसमें शंका है।
आपने जो
क्यों है ट्रेन चार्ज निकल चुकी है,
आपने जो रेफरेंस दिया है वो नारकी के लिए कह रहे हैं, तीन को छोड़ कर उसको छोड़ देना है, अपने विचार में वो बात लेनी नहीं है, अपेक्षित बात है, मर्यादित बात है, नारकी के लिए बात है, इनको तो छोड़ देना है।
नीचे लिखा था कि उनके वो अल्पसा तो बहुत बंद होता, बहुत पसा होता,
लेकिन नहीं पड़ी तीन को छोड़ करके देव मनुष्य आयु त्रिंच आयु के बिना अन्य सर्व अन्य मैंने एक ही रहा ऐसा, तो ये बात मर्यादित है। तो फिर उसके लिए तो क्या है कि आपको गुमट साहब देखना पड़े, जब तक पूरा डिटेल वहां से मिले, ऐसी बात है। ठीक है, ये सब ऐसे प्रश्न तो जानकारी के होते हैं, उसमें कोई ठीक समझे अठीक समझे, कोई आगे पीछे समझे, उसमें कोई प्रयोजन में आपत्ति नहीं होती है। हाँ, गुमट साहब का ये विषय, अपने तो चार गति में से किसी भी एक गति में नहीं जाना है, पंचम गति की जो हमारी प्रयोजन है वो तो पंचम गति का है, तो इसकी सोचनी है, जितनी हमारी शक्ति है इस विषय में हम सोचें कि पंचम गति से गति को कैसे प्राप्त हो, हम ये बात है। हाँ, अच्छा, ये प्रश्नों को भाई ने निकाला था पहले दिन, इसमें प्रश्न क्या है आपका? हाँ, ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी है कि पूर्णता के लक्ष्य से तो पूर्ण पर्याय हुई, तो पर्याय का लक्ष्य क्यों कराया? क्यों कि जब किसी भी जीव का इस मार्ग में, मार्ग के पहले जो प्रारंभ होता है, क्या मार्ग का प्रारंभ में तो ध्रुव का लक्ष्य है, लेकिन ध्रुव तो पहचानने के काल में लक्ष्य में आता है, क्या जब ये उपयोग लक्षण से पहचाना जाता है तब उसका लक्ष्य होता है ध्रुव का स्वभाव का। जब किसी को पहचान नहीं है उनको यथार्थ रूप से इस ध्रुव के पहचान तक पहुंचने के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं है, अब हमें ये सोचनी है। देखो, हमारे लिए हम सोचें कि हमें अभी पहचान नहीं हुई है, स्वरूप निश्चय नहीं हुआ, आपने वो निर्वाण दर्शन की पगडंडी तो पढ़ा नहीं पढ़ा? हाँ, पगडंडी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो किताब छोटी सी ले जाना, इधर से हम ले आए हैं, ले जाना। उसका तीसरा प्रकरण है स्वरूप निश्चय का, स्वरूप निश्चय कैसे हो, जहाँ से सम्यक समिप्ता होती है, सम्यक सन्मुखता होती है और अनुभव का ये कारण बनता है। स्वरूप निश्चय है, उस स्वरूप की पहचान है, स्वरूप का लक्ष्य है, स्वरूप का प्रतिभास है, और वो स्वरूप अनुभव का एक अनन्य कारण है। पूर्व क्रम में एक कारण परंपरा का ये क्रम है। तो जिसको ये स्वरूप निश्चय नहीं हुआ, ऐसे जीव को कहां से शुरुआत हो कि वो स्वरूप निश्चय तक पहुंचे, अपनी पहचान तक पहुंचे, इसकी कोई व्यवस्था है कि नहीं है? जैसे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग चतुर्थ गुण स्थान से लेकर बारहवां गुण स्थान तक ये मोक्ष मार्ग बोला जाता है, तेरहवें गुण स्थान से उसका फल जो मोक्ष है वो गिना जाता है, तो ये मोक्ष मार्ग नियत हो गया। क्या हुआ कि तीनों काल में मोक्ष मार्ग दो नहीं हो सकते, एक हो ये तीन काल में परमार्थ का पंथ, दो मोक्ष मार्ग नहीं होता कभी। तो जब ये मोक्ष मार्ग नियत है, व्यवस्थित है, तो इस मोक्ष मार्ग में प्रवेश पाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, ये एक राजमार्ग है, मोक्ष मार्ग है, हाईवे जिसको कहते हैं, लेकिन उसका कोई अप्रोच रोड है कि नहीं है, उसका अप्रोच कैसे किया जाए कि हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आ जाए, तो वो भी एक व्यवस्थित बात है। क्योंकि हमारे यहाँ मुमुक्षु की भूमिका के बहुत से प्रकार के परिणाम की चर्चाएं और भिन्न भिन्न ग्रंथ में भिन्न भिन्न बातें बहुत सी हैं। जैसे कि मुमुक्षु होता है वो मंदकषायी होता है, दया शांति समता क्षमा त्याग वैराग होता है, ये सब होता है, सरल होता है, सभी प्रकार के अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं। लेकिन इसकी कोई वैज्ञानिक व्यवस्था है कि नहीं है, तो उस सारी जो सिस्टम है प्रारंभ से लेकर स्वरूप की पहचान तक की कोई व्यवस्था है, सिस्टमेटिक बात है, उस बात को हमने इस किताब के पहले प्रकरण में लिखी है कि प्रारंभ यहां से होता है कि जब किसी जीव को अपने वैचारिक भूमिका में ऐसा निर्धार होता है कि मुझे परिपूर्ण शुद्ध होना है, क्या मेरा आदर्श है, मेरा जीवन का कोई गोल है जहां मुझे पहुंचना है, ये परिपूर्ण शुद्धि का है। क्यों? कि परिपूर्ण शुद्धि से ही परिपूर्ण सुख मिलता है, जितनी अशुद्धि रहती है उतना दुख साथ में रहता है। क्यों? कि दुख और दोष अविनाभावी है, सुख और निर्दोषता है वो अविनाभावी है, साथ में ही रहता है, अलग अलग भी नहीं हो सकता। तो आप किसी भी जीव को ऐसा निर्धार हो जाता है कि मुझे पूर्ण सुखी होना है, मुझे पूर्ण शुद्ध होना है, तो ये सबसे पहली बात पर्याय आश्रित होगी शुरुआत, क्योंकि द्रव्य को तो पहचानता नहीं। जब ये बात होती है तब उनको अपने ध्येय के खिलाफ जितने भी अपने परिणाम होते हैं उस परिणाम का निषेध आया करता है। लेकिन क्या होता है कि बेबस रूप से उसको परिणाम दूषित हो ही जाते हैं। इस हालत में वो मुमुक्षु आत्मा और विचार करता है कि सहज रूप से मैं ऐसी कौन सी चीज का अवलंबन लूं तो मुझे दोष की उत्पत्ति ही नहीं होवे। तो वर्तमान में अपने अवलंबन को देखता है तो उनको पता चलता है कि अरे मैं जब ऐसा वर्तमान कर्मजनित अवस्था में मनुष्य हूं, ऐसा जब अवलंबन लेता हूं तो मेरे सब परिणाम मनुष्योचित होते हैं। जब मनुष्योचित परिणाम होते हैं तो सभी परिणाम निर्दोष हो ही नहीं सकते, उसमें राग द्वेष मोह आए बिना रह नहीं सकता। तो इनकी खोज चलती है। क्या खोज चलती है? कि मुझे कोई ऐसा अवलंबन चाहिए कि जिस अवलंबन के दौरान मेरे परिणाम सहज रूप से शुद्ध ही होते रहे। ये अवलंबन क्या है? तो ये बात हमारे परमात्मों में प्रसिद्ध है कि जो आत्मा अपना मूल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लेगा, जो ध्रुव है, नित्य है, हर हालत में होता है, उसका अवलंबन लेगा, वही स्वतः स्वयं रूप से शुद्ध रूप परिणमन करने लग जाएगा। तो मेरा स्वरूप कैसा, इसकी खोज चलती है, इसकी एक जिज्ञासा पैदा होती है, और एक जिज्ञासा का भी एक स्वरूप है जो वहां में लिखा है कि कैसी जिज्ञासा होती है, कि उसका इस जिज्ञासा की पूर्ति नहीं होवे वहां तक उनको चैन नहीं पड़ता, वो बेचैन हो जाता है, कहीं भी उसका मन नहीं लगता। जैसे कि आदमी को खाने पीने में तो मन लगे तो वहां भी नहीं लगता, नींद भी नहीं आवे। जैसे कोई हमारा 50,000 का हीरा खो गया और शाम को 7 बजे खो गया, देखते देखते हाथ में से गिर गया और हम ढूंढने लगे 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, मेरा का पता नहीं चलता है, तो क्या हम सो जाएंगे फिर? इतरों भी कल सुबह ढूंढेंगे, अब तो सो जाओ, टाइम हो गया हमारा सोने का, नींद नहीं आएगी। घर में खोया हुआ है, कहीं बाहर में रास्ते पे नहीं पड़ा है तो भी निंदाई की क्या है कि इतनी बड़ी चीज हमारे हाथ में से सरक गई है, जब तक नहीं मिले निंद नहीं आती है। तो ऐसे हमारी पूर्ण शांति और पूर्ण शुद्धि जिसके अवलंबन से मिलने वाली है, जब हमारे श्री गुरु ये बात को बताते हैं, इधर तो सुविधा है। कौन सी सुविधा है कि तेरा स्वभाव तेरे उपयोग में मौजूद है। क्या कहते हैं कौन भाई? तेरा स्वभाव तेरे उपयोग में मौजूद है, तेरे उपयोग के प्रकाश में तेरा हीरा पड़ा है, अंधेरे में नहीं पड़ा है। तुम अंधेरे में मत खोज, न शरीर में खोजना है न राग में खोजना है, वहां तो सब अंधेरा अंधेरा है। उपयोग के ज्ञान के प्रकाश में स्वभाव प्रकट है, उतनी सुविधा है कि परमागमों में हमें वस्तु भी दर्शाई है, वस्तु को प्राप्त करने की विधि जो है, कार्य पद्धति है, उसी को भी दिखाई है। तो फिर जो जिसको जिज्ञासा है, जिसको प्यास लगी है, उसको ये बात सहज रूप से सुहाती है और सहज रूप से इन बातों में उनकी रुचि जमती है और वो अपने भीतर में खोज करने लगता है कि अरे मेरे उपयोग में है तो उपयोग तो निरंतर चलता है, मैं क्यों नहीं खोजता इधर, मैं शास्त्र में क्यों खोजता हूं, मेरे उपयोग में खोजना है, तो इसकी एक खोज चालू होती है। इस तरह उनको अपना स्वरूप का पता लगता है, स्वरूप निश्चय के काल में प्रतिभास आता है। तो ये स्वतंत्र से आता है, जिनके कई पत्र इन बातें लिखी है इस विषय में, बहुत सुंदर पत्र है। जब उन्होंने आत्मसिद्धि लिख करके भेजी अपने प्रिय पात्र को, बहुत सुपात्र थे वो सुभाग भाई, तो उनको एक जिज्ञासा हुई है सुभाग भाई को, उन्होंने ये प्रश्न उठाया है, उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं श्रीमत जी। आत्मसिद्धि में कहे हुए समकीत के प्रकोप प्रकारों का विशेषार्थ जानने की इच्छा संबंधित आपका पत्र मिला है। पत्र की पहुंच देते हैं पहले कि आपका प्रश्न है वो समझ में आया है कि आत्मसिद्धि में समकीत की कहीं बातें लिखी है तो कितने प्रकार के समकीत होते हैं वो तो बताइए, ये प्रश्न किया है सुभाग भाई ने। उत्तर देते हैं कि आत्मसिद्धि में हमने तीन प्रकार के समकित उपदिष्ट किया है, हमने शास्त्र लिखा है उसमें तीन प्रकार का समकित की बात की चर्चा हमने की है। तो पारमार्थिक समकित तो एक ही होता है जो स्वरूप का शुद्ध श्रद्धान रूप होता है। क्या? स्वरूप का शुद्ध श्रद्धान, उसको हम पारमार्थिक संकेत कहते हैं, जो प्रथम निर्विकल्प स्वानुभूति के काल में अपने आप पैदा होता है। तो फिर ये तीन प्रकार की बात कैसे आई? क्योंकि ये सम्यक दर्शन का कोई कारण होता है कि जिस कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, ये दर्शाने के लिए कारण को भी संकेत आरोपित संकेत का आरोप करके संकेत कह दिया है इधर आत्मसिद्धि में, और इस कारण का भी कारण को दर्शा करके उसको भी उपचार से संकित कहा है। मैंने मुमुक्षु जीव के लिए उन्होंने सम्यक दर्शन का पूर्व कारण और पूर्व कारण का पूर्व कारण बतला करके इस विषय को सरल कर दिया है। सम्यक दर्शन पाने के लिए इस विषय को सरल कर दिया है। घड़ी में देखिएगा कितना टाइम हुआ है, पता नहीं टाइम हो गया है, क्या करेंगे, विषय तो थोड़ा प्रयोजनभूत भी है और शायद आधा घंटा तो कम से कम चल जाए, ऐसा है। बहुत संक्षेप में लेवे तो उतनी बात है कि पहले में वो कहते हैं कि आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति रूप, आज्ञा की अपूर्व रुचि रूप, स्वच्छंद निरोधता से आप्त पुरुष की भक्ति रूप, यह संकेत का पहला प्रकार है। मैंने ये संकेत का कारण का कारण है ये थोड़ा विस्तार से विचार करने लायक चीज है, लेकिन कोई प्रगट सत्पुरुष मिलता है तो जिसके वचन पर हम आत्म कल्याण के लिए विश्वास रख सकते हैं, तो विश्वास कब रखेंगे कि जब हम आदमी को पहचानेंगे तब। कोई अनजान आदमी पर कोई विश्वास नहीं करते, पहचानते तब ही विश्वास करते हैं। तो ये बात आई सत्पुरुष के पहचान की। जब किसी मुमुक्षु को सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग मिलता है और उसको इनकी पहचान होती है, ऐसी योग्यता होती है जिसको उत्कृष्ट पात्रता कहते हैं, तब उनको सम्यक दर्शन होने का एक प्रत्यक्ष कारण वहां पैदा होता है। तो उसको सत्पुरुष पर भक्ति आती है। कैसी भक्ति आती है? स्वच्छंद निरोध रूप से, अपना स्वच्छंद कहीं नहीं होवे। ज्ञानी है सो परमात्मा है, कैसा आता है? ज्ञानी है सो परमात्मा है। क्यों परमात्मा है? कि परमात्मा की वचन के निमित्त से हमें मोक्ष मार्ग या संसार को तिरने का एक बाह्य निमित्त मिलता है, वैसे ही ज्ञानी के वचन से संसार को तिरने का एक बाह्य निमित्त मिलता है। निमित्तत्व की जाति एक है, इसलिए ज्ञानी को परमात्मा बोलने में आया है। तो उसकी आज्ञा में रहना और इसकी वचन की में शंका कहीं नहीं, संदेह नहीं उठना, ये विषय तो थोड़ा और लंबा चौड़ा है, इसलिए खास इसी विषय पर हमने एक प्रकरण उसी किताब में लिखा है, सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, यहां से शुरुआत से लेकर के मुमुक्षु जीव अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ता है तो किस तरह बढ़ता है, कैसे कैसे परिणाम स्वतः हुए जाते हैं और बढ़ता है, इसका एक प्रकरण लिखा। इस सत्पुरुष के प्रत्यक्ष योग के विषय में एक दूसरा प्रकरण लिखा। और जो स्वरूप निश्चय है, जो सम्यक दर्शन का खास कारण है, इसका एक तीसरा प्रकरण लिखा है। सारे किताब में तीन प्रकरण लिखे हैं, विस्तार से इसलिए लिखे हैं कि बराबर समझ में आ जाए बात कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे परिणाम होते हैं, और गलतियां होती है तो वो कैसे होती है, गलतियां नहीं होती तो सही रूप में कैसे होता है, दोनों साइड की चर्चा इसमें की गई है। तो ये जब बनता है तब उसको एक योग्यता प्राप्त होती है कि अपना स्वभाव जो ज्ञान के उपयोग में वेदन रूप से प्रसिद्ध है, उसकी प्रतीति आती है, उसका विश्वास आता है कि मेरा स्वभाव ऐसा ही है। ये स्वरूप निश्चय कहो या जैसा स्वरूप है ठीक वैसा का वैसा प्रतिभास कहो, और इस विषय की एक चर्चा अपने जो गुरुदेव का शताब्दी वर्ष का जो विशेषांक निकला है, इसमें 144वीं गाथा के प्रवचन में ये बात लिया है कि प्रथम तो श्रुत ज्ञान द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना, ये स्वरूप निश्चय की बात में गुरुदेव ने इतनी चर्चा की है। और उसमें जो कोई खास बात है तो वो है कि ज्ञान के उपयोग के माध्यम से स्वभाव का निश्चय होता है तो ज्ञान की प्रधानता में ज्ञान स्वभाव का निश्चय हुआ, राग की प्रधानता में नहीं हुआ। ये निश्चय की विशिष्टता है और इस विशिष्टता को यहाँ सम्यक दर्शन का कारण इसलिए कहा कि यहाँ से ही मुमुक्षु जीव का स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ वहां से पैदा होता है, वहां से चालू होता है और इतनी स्वरूप की महिमा आती है कि उसको अनुभव तक पहुंचा देती है, इसलिए उसको अनन्य कारण कहा है। और त्रिशा सम्यक दर्शन तो निर्विकल्प स्वानुभव में ही होता है, ये बात उन्होंने स्पष्ट लिखी है। ऐसे ये बात जो है वो विचारने लायक है समय कुछ।